मिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विजे यं प्राप्यजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि त्वैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति प्रीत्यै राधे। मैं सबसे पहले अपने परमाराध्य श्री श्री गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। मैं अपनी समिति की तरफ से इस मंदिर के अभिभावकों को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ और पंडित जी को भी, इसके व्यवस्थापकों को भी, जो हम जब आते हैं हम लोगों के लिए यहाँ खुली छूट देते हैं कि हम लोग यहाँ पर प्रवचन कर सकें और सब प्रकार का सहयोग करते हैं, इसलिए इनको पुनः पुनः धन्यवाद है। विशेष करके हम लोग सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए विश्व के समस्त देशों में अब तक 12-14 बार हम लोग विश्व के समस्त देशों में भ्रमण कर चुके हैं। वहाँ पर जहाँ जहाँ भी गए लोगों ने बड़े आदर के साथ में इसका श्रवण किया। बहुत से लोगों को सनातन धर्म के संबंध में ज्ञान नहीं है, विशेष करके विदेशियों को। वे तरह तरह से अनुमान लगाते हैं कि भारतवर्ष एक भूत प्रेत इत्यादि की जगह है, बहुत दरिद्र हैं, ऐसी उनकी कल्पना है। हम तो ऐसे भारतवर्ष से आए हैं, इतना समृद्ध है कि उसकी एक वाणी रूपी रत्न को विश्व यदि धारण करता है तो उसका जन्म सार्थक हो जाएगा, जन्म जन्मांतरों के लिए भी लोग सुखी हो जाएंगे एक उपदेश का भी यदि धारण करें। इसलिए हम लोग उस समृद्ध भारत से आए हैं, भीख मांगने के लिए नहीं आए। ऐसी कोई दी एक चीज देने के लिए आए हैं जिसको पा करके उनका जन्म सार्थक हो जाए और जन्म जन्मांतरों में उनको संसारी किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं हो। हमारे सुखदेव जी दरिद्रता के कारण में नंगे नहीं डोलते थे। सनक सनंदन सनत कुमार ये लोग भी दरिद्रता के वजह से नंग धड़ंग नहीं घूमते थे। शंकर जी नंग धड़ंग रहते हैं दरिद्रता के कारण नहीं, विश्व को वो सब कुछ दे सकते हैं, स्वयं वे पूर्ण हैं। इसलिए हम लोग भी उस बौद्धिक सभ्यता की वाणी को जगत में प्रचार करने के लिए आए हैं। और सचमुच में यदि कोई इस चीज को अनुभव करे तो उनका जरूर ही कल्याण होगा। कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु के धर्म को कुछ विकृत रूप में परिवेशन करते हैं, उन लोगों का चरित्र ठीक नहीं, इसलिए लोग लो अनुमान करते हैं कि ये भी और धर्मों की तरह ही है, किंतु यथार्थ में नहीं। आप लोगों ने सुना कि विश्व में संकीर्तन धर्म का, कृष्ण नाम का प्रचार करने वाले श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, जिनको जगत के लोग प्रभुपाद कहते हैं, वे हमारे गुरु भाई थे, हमारे शिक्षा गुरु भी हैं। जैसे वे भक्ति वेदांत स्वामी जी थे भक्ति वेदांत, वैसे मैं भी भक्ति वेदांत नारायण महाराज हमको लोग कहते हैं। मैंने उनसे पहले संन्यास लिया था, बहुत पहले, और मेरे रिक्वेस्ट से उन्होंने संन्यास लिया था। मैंने कहा जी आप क्या कर रहे हैं, आप संसार का के कोई नहीं हैं, जल्दी से संन्यास लेकर के विश्व में प्रचार कीजिए। उन्होंने बात मेरी सुनी और हमारे गुरुजी से ही 1959 में उन्होंने हमारे गुरुजी से संन्यास लिया। मैंने संन्यास के समय में मैं था, उनको दंड और कॉफिन और कपड़े पहना सिखलाया, ये कैसे पहना जाता है, और संन्यास लेकर के वे विश्व में इस भारतीय संस्कृति का प्रचार उन्होंने किया। विशेष करके ये समझना चाहिए कि भारतीय संस्कृति क्या चीज है। संसार के लोग नहीं समझते इसको, इस रूप में समझिए, शरीर मैं नहीं हूं। पहली बात, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इसके अंदर में आत्मा हूं। शरीर के लिए आप लोग जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ करते हैं, उससे आत्मा प्रसन्न नहीं होगी। लाख रच पच करके मर जाइए तो भी, हिरण्यकश्यप जैसा महान बलवान व्यक्ति भी सुखी नहीं रह सका। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नातियों से युक्त रावण भी, जिनके सबके महल सोने के थे, नहीं सुखी रह सका। उसके वंश में कोई दिया बत्ती देने वाला नहीं रहा, विभीषण केवल रहा, जिसको उसने मार करके निकाल दिया था। वो लोग शरीर को समझते थे जे मैं हूं, किंतु यह बात गलत है। हम लोग भगवान के नित्य दास हैं, वी आर ऑल एटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड। इस चीज को हम लोग सहजी नहीं समझ पाते हैं, इसलिए शरीर के लिए आप लोग जो कुछ भी करेंगे उसे भीतर की आत्मा प्रसन्न होगी कि नहीं, कोई ठीक नहीं। कैसे प्रसन्न होगी, यदि किसी प्रकार से आप लोगों ने अनुभव किया इस शरीर में आत्मा है, जो भगवान का पार्ट और पार्सल और नित्य दास है। इस जन्म का कर्तव्य हमारा यही है कि हम इस चीज को रियलाइज करें कि हम लोग भगवान के नित्य दास हैं। कोई भी जगत में सुखी नहीं है। सबसे समृद्ध राष्ट्र अमेरिका, अमेरिका में क्लिंटन सुखी हैं, राष्ट्रपति तो दूसरे अब हो गए, उनकी स्त्री की भी नहीं बनती है उनसे। वो अपने प्रेम को आस्वादन करने के लिए एक गर्लफ्रेंड से कनेक्शन किया, ये जगत में विदित है। और एक दिन अंत में सब कुछ छोड़ करके और रोना पड़ेगा, शरीर को छोड़ देना पड़ेगा। इसलिए कोई भी सुखी नहीं है। सुखी वही हो सकता है जो इस चीज को रियलाइज करे कि मैं आत्मा हूं, भगवान का नित्य दास हूं। इसको रियलाइज करने के लिए सब चीजों का मंथन करके सार के रूप में भगवान का नाम बदलाया गया हमारे शास्त्रों में, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरंजिता। यदि सुखी होना चाहते हो तो इस दुख भरे प्रॉब्लम भरे हुए जगत में भगवान का नाम का आश्रय, कोटि कोटि यज्ञों का जो फल होगा उससे भी बढ़कर के तीर्थों में स्नान करने का, दान करने का, मंदिर में पूजा करने का जो फल होगा वो एक कृष्ण नाम के द्वारा ही सभी कुछ मिल सकता है। उलटा नाम जपत जग जान बाल नीक भय ब्रह्म समान। अरे सीधा नाम की तो बात कर छोड़ो, प्रेम से भगवान का नाम करने की तो बात छोड़ो, उल्टा नाम मरा मरा कह करके और वाल्मीकि जी परम पदवी को प्राप्त कर गए। अगस्त्य जी ने समुद्र को ही सोच लिया, शंकर जी विश्व का भरण पोषण करते हैं, जगत का विनाश भी करते हैं इसके द्वारा, ब्रह्मा इस जगत को सृजन करते हैं, ये नाम के बल पर। विशेष करके कलयुग में इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। यदि कोई कुछ नहीं करता, भगवान का नाम स्मरण करता है, तो उसी से उसका जीवन सार्थक हो गया, ऐसा ये भारतीय की संस्कृति है। आप लोगों ने सुना होगा अतिथि देवो भव, मातृ पितृ देवो भव, ये सब भारतवर्ष के, सर्वे सुखिना भवंतु, सभी लोग सुखी हों, ऐसा कोई भी विश्व का ऐसा धर्म नहीं है जो उसमें ऐसी बातें, सभी लोगों के लिए उसमें बात बतलाया गया। इसलिए आप जो कुछ करते हैं करें, किंतु भगवान का स्मरण करें, चीज को समझिए। इसी चीजों को जब जब हम भूल जाते हैं तब तब भगवान स्वयं जगत में अवतरित होते हैं, राम कृष्ण के रूप में, नृसिंह भगवान के रूप में, और कभी कभी अपने सेवकों को, परिकरों को भी भेज जगत में भेजते हैं। जैसे रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य इत्यादि को, शंकर जी उनके परम सुहृद और अभिन्न उनसे हैं, भगवत तत्व को जानने वाले शंकर से, उमा पार्वती से अधिक कोई श्रेष्ठ नहीं, कभी इनको भेजते हैं जगत में। इस तरह से किस लिए, ये भूले भटके को जाओ स्मरण दिलाओ, ये भूले भटके हैं, भगवान का स्मरण, उनकी आराधना करो, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं इत्यादि उनका करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए अपने जीवन को, संसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में, एकत्रित करने में तुम समय को बर्बाद मत करो, ये बर्बाद करने के लिए है। जो कुछ तुम कलेक्शन कर रहे हो, संग्रह कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए क्या लाभदायी होगा, सब तो छोड़ करके जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, छोड़ करके जाना। एक दंत कथा है, एक साधारण कथा के रूप में समझिए। कोई एक संत महापुरुष किसी राजा के घर पर गए और बोले, मैं राजा से भेंट करना चाहता हूं। राजा ने सोचा जो साधारण फकीर होगा, कोई पैसे रुपए के लिए आया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, पीछे आना। 8-10 दिन के बाद में फिर वो गया, फिर उन्होंने कहा, फिर वही आ गया, कहा दो समय नहीं, अभी पीछे आया। 2-4 दिन के बाद में फिर आया, फिर आने के बाद में उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं है, कहा दो, 2 दिन के बाद में आए। तो वो रानी के पास में चला गया और खबर दिया, जी रानी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो रानी ने कहा, भाई जाओ कुछ साधु संत को बुला लाओ, क्या चाहते हैं। तो जब आया तो उन्होंने कहा, जी आपको क्या चीज़ की जरूरत है, मैं क्या आपको दूँ, कैसे सेवा करूँ। उन्होंने कहा, जी मुझको कुछ सेवा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए आया। राजा की आयु अब केवल 7 दिन बची है, मैं तो 15-20 दिन पहले आया, किंतु हमसे उन्होंने बातचीत नहीं किया, तो मैं आपको बतला रहा हूं 7 दिन में यह राजा मर जाएंगे, इसलिए जो कुछ करना है करो। रानी घबरा गई और साधु इतने में निकल करके चले गए। राजा को उन्होंने खबर दिया, जय राजा जी को बुला लो। राजा एक कहने से ही बस झट दौड़ करके आया। रानी ने कहा, उनके लिए समय मिल गया किंतु साधु के लिए नहीं समय मिला। आजकल साधुओं का भी चरित्र ऐसे है, मांगने के लिए घूमते हैं, घर बार छोड़ करके फिर पैसे के पीछे पीछे दौड़ते हैं, ये साधुत्व नहीं। तो वो ऐसा ही समझ करके उनको टरका दिया था। अब रानी के बुलाने से आ गए तो रानी ने उनसे कहा कि आपकी 7 दिन की आयु केवल मात्र है, एक साधु हमसे कह करके अभी तुरंत निकले। वो साधु कहाँ है, खोजने के लिए अपने लोगों को भेजा, देखा जी कहीं पर नदी के किनारे बैठे हुए हरिनाम कर रहे हैं, उनको बुला करके जल्दी से ले गया, जिसे आपको महाराज बुला रहे हैं। गए अब बड़ी खातिरदारी के साथ में सिंहासन पर बैठा करके पूजा करके और उनसे पूछा, महाराज आपने कहा है जी मेरी 7 दिन की आयु है, तो हाँ मैं तो देख रहा हूँ कि 7 दिन की आयु, कोई भी तुमको बचा नहीं सकता, तुमको जरूर मरना होगा, जो कुछ करना है कर लो। उन्होंने मैं क्या करूं क्या करूं, मैं देखता हूं तुमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसलिए स्वर्ग में तुम्हारी स्वर्ग में तुमको जाना है, और वहां पर सारी व्यवस्था है, केवल एक एक बात की कमी है, वहां पर बड़े लंबे लंबे इंडिया से किसी प्रकार से मच्छर वहां पर आ गए हैं बड़े काले, और वो काटने से मलेरिया हो जाएगा, तो इसलिए तुम ऐसी बात करो कि मच्छरदानी यहाँ पर है, उसका एक कोना थोड़ा सा फटा हुआ है, उससे मच्छर निकल सकते हैं, भीतर चले जा सकते, इसलिए सुई और धागा थोड़ा सा लेकर के जाना है। सुई धागा लेकर के मैं कैसे जाऊँगा, तो तुमने सारा जीवन किया किया जो एक सुई धागा भी नहीं ले जा सकते, तो यही हमारी अवस्था है, क्या लेकर के जाएंगे, एक सुई धागा भी तो नहीं ले जा सकते, अपना एक केस भी तो नहीं ले जा सकते, करके क्या रहे हो। इसलिए प्यारे बंधुओं, कुछ लेकर के नहीं जाना है जो इतने के लिए परिश्रम कर रहे हो, बेटे बेटियों के लिए कर रहे हैं वो तुमको नहीं मानेंगे, अब पश्चिम की हवा भारत में भी चली गई है, यहां थोड़े से बड़े हो गए उनकी शादी की फुर्र उड़े अपनी पत्नियों को लेकर के, आपने बाल बच्चों में ही वो लग जाएंगे, तुमको एक ग्लास पानी भी नहीं मिलेगा। आजकल मैं देख रहा हूं जहां जहां जा रहा हूं, इंडिया के लोग जो विदेशों में गए थे कनाडा अमेरिका इत्यादि में पछता रहे हैं, क्या पछता रहे हैं, एक आदमी रो करके बोले पंजाबी भाई मुझसे कनाडा में, जो मैं जिसके लिए अर्थ के लिए वर्थ तो मुझे खूब प्रचुर मिला, और हमारे बच्चे बिगड़ गए, कैसे बिगड़ गए, सारा हमारी लड़की 22-24 वर्ष की हो गई है, वो कुछ दिन पहले अपने एक बॉयफ्रेंड को लेकर के आई और घर में शराब पी करके उसके साथ में रहने लगी। मैंने कहा जी हमारे जीते हुए तुम क्या कर रही, कहीं अभी बोलोगे अभी शूट कर देंगे, ओ मैं इसलिए भारत को छोड़ करके आया, क्या हमारे जीवन का निर्वाह वहां पर नहीं हो सकता था, किंतु अर्थ के लालसा से आए और अपना सब कुछ हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। यहां ये भारत की संस्कृति नहीं है, इस तरह से वो रो रहे थे। ऐसी ऐसी सब बातें देखने में आ रही है, इसलिए आप लोग सर्वदा भारतीय संस्कृति की याद कर रहे हैं, आए हैं ठीक है, यहां पर प्रवासी भी बन गए हैं ठीक है, कि अपनी संस्कृति को याद रखनी चाहिए, कुछ भी लेकर के नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना है, और हम आत्मा हैं, भगवान के नित्य दास हैं, भगवान का भजन करते हुए जहां भी अपने जीवन का निर्वाह करें, किंतु संस्कृति को मत भूलिए। इसीलिए मैं बतला रहा था, जो सुप्रीम लॉर्ड जो हमारे हैं भगवान हैं, ये कभी स्वयं इस जगत में आते हैं और कभी अपने बहुत से अवतार हैं उनको भेजते हैं, और कभी अपने परिकरों को शक्तियों को आचार्यों के रूप में भक्तों के रूप में भेजते हैं, किस लिए, याद दिलाने के लिए, देखो याद रखो तुम इस संसार के कोई व्यक्ति नहीं हो, ये जो शरीर देख रहे हो वो 2 दिन के बाद में जब इस आत्मा निकल जाएगी तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पशु पक्षी इसे खा करके टट्टी कर देंगे, और जला दोगे तो यह राख भस्म हो जाएगा, यही तो यह शरीर है सुंदर शरीर, गुमान मत करो अपने सौंदर्य पर गुमान करने की जरूरत नहीं। ये दो दिन में बूढ़ी हो जाना है, बूढ़ा हो जाना है, याद रखो इस चीज को भी। इसलिए इसको याद रख करके भगवान का स्मरण, यही इसी की शिक्षा के लिए आते हैं। कुछ दिन पहले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी 5,500 वर्ष पहले स्वयं भगवान जगत में अवतरण हुए। उसके पहले रामचंद्र जी हुए, नृसिंह भगवान हुए हैं, उसके पहले और भी कितने अवतार हो गए हैं, किंतु समस्त अवतारों के मूल अवतारी एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही स्वयं भगवत्ता की चरम सीमा है। किस लिए अवतरित हुए? जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सिजम परिप्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे। अर्जुन को गीता में बतला रहे हैं, अभी नहीं सदा ही, जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब असुर बढ़ते हैं, दैत्य दानव बढ़ते हैं और धर्म को नष्ट करने लगते हैं, उस समय में अवतीर्ण होता है। धर्म की रक्षा करता हूं, असुरों का दलन करता हूं, संहार करता हूं और भक्तों का पालन करता हूं। एक बात किंतु विचारणीय है, यहां कृष्ण तो धर्म की रक्षा के लिए आए। महाभारत युद्ध में उन्होंने क्या किया? कितने करोड़ों लोगों का ध्वंस हुआ, मारे गए, करोड़ों स्त्रियां विधवा हो गईं, लड़के वर्ण संकर हुए। धर्म कहां रहा? नहीं, तब भागवत सुनने के लिए उन्होंने इसके द्वारा ऐसे असुरों का दलन कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें अब शांति के साथ में कुछ भागवत का श्रवण किया जाए। ठीक उसी के बाद ही में परीक्षित महाराज की सभा में सुखदेव गोस्वामी ने भागवत का श्रवण करा। भागवत क्या है? भागवत है वेद शास्त्रों का सार है। निगम कल्प तरु गलित फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संगीतम पिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भो भाग। हे भावजन, हे नित्य मुक्त महापुरुष लोग, भागवत का श्रवण करें। गीता है उपनिषदों का सार, खूब अच्छी तरह से समझें। सर्व उपनिषदों गावो तो घा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता गीतामृतम महत। गीता अमृत है, उपनिषदों का सार है। और उन्होंने अर्जुन को के बहाने जगत के लिए उन्होंने इस दोहन किया, इस दुग्ध रूपी अमृत का। किंतु श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कल्पतरु गलितं फलम सुखम मुखाद अमृत। निगम और आगम केवल उपनिषद ही नहीं, गीता केवल उपनिषद की जननी है और उसका अमृत का सार है गीता। और श्रीमद् भागवत क्या है? निगम और आगम समस्त जितने वेद उपनिषद श्रुतियां, चारों वेद श्रुतियां, उपनिषद समूह, गीता भाग, गीता रामायण इत्यादि का सार संकलन ये श्रीमद् भागवत है। गीता यदि पहली पुस्तक है धर्म राज्य की, तो गीता क्या है? भागवतम। ये क्या है? ये एम ए पी एच डी लीट के लिए सर्वोच्च ये शिक्षा का ग्रंथ है। इसका प्रचार करने के लिए कृष्ण का अवतरण हुआ, केवल कंस जैसे दुष्टों को मारने के लिए ही नहीं। कलिजुग अभी आ रहा था, उसको दबाने के लिए ही नहीं। जरासंध, दुर्योधन जो कली का अवतार कर्ण, दुशासन, शकुनी, ये सब दुष्ट लोग उस समय थे। काल जवन था जो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का घोर विरोधी था, इन सब का दमन करने के लिए ये कृष्ण का अवतार। इतना ही नहीं, बहुत एक गूढ़ रहस्य है जो कि साधारण लोगों के लिए हृदयंगम करना बड़ा कठिन है, समझना बड़ा भारी कठिन है। वो क्या, समस्त शास्त्र भगवान का ध्यान लगाने के लिए, उनकी आराधना के लिए कहते हैं। और श्रीमद्भागवत क्या कहते हैं, श्रीमद्भागवत का कथन यह है कि ये परब्रह्म भी रसिक चूड़ामणि है, परम दयालु है। वे किसी का बेटा होकर, किसी के पुत्र होकर, किसी के बंधु सखा बनकर, किसी के प्राण प्रियतम बनकर, मोस्ट बिलव्ड बनकर इस जगत में आते हैं। हम लोग भगवान को खोजते हैं, भागवत कहता है या कहती है कि कृष्ण तुम्हारे लिए उस जगत से अवतरण करते हैं, उतरते हैं तो उनको अवतार कहते हैं। किस लिए, अपने गरज से उतरते हैं। किस लिए, ये हमारे प्यारे जीव हैं, हमको छोड़कर के भटक रहे हैं, केवल आज ही से नहीं कोटि कोटि जन्मों से भटक रहे हैं, ऐसा समझो। ये यही पहला मेरा जन्म है ऐसा मत समझो, करोड़ों करोड़ों बार, जब से विश्व की सृष्टि आरंभ हुई तब से हम लोगों का जन्म है, किंतु आज तक मुक्त होने का सुयोग नहीं मिला। आज ये पहला समय है जब मनुष्य जन्म मिला। कुछ साधु संग कर रहे हैं, मंदिरों में आ रहे हैं, ठाकुर जी का विग्रह देख रहे हैं, किंतु कभी तक, अभी तक हम लोगों का कभी मुक्ति नहीं हुई ये संसार से, उसी में रच पच करके जा, एंडलेस चेन ऑफ बर्थ एंड डेथ देख में हम लोग घूम रहे हैं। अभी फिर मृत्यु होगी, फिर आना पड़ेगा, फिर वैसे ही यदि सांप छुछंदर होंगे, गधे घोड़े शुकर कुकर होंगे, तो अभी स्त्री पुत्र मिल जाएंगे, किंतु यह दिव्य ज्ञान नहीं मिलेगा। जो भगवान को भूल करके हमारी ये दशा है, भगवान का स्मरण करके इस जगत से जल्दी से चले जाओ। इसलिए भगवान स्वयं उतरते हैं, लोग भगवान की आराधना करते हैं, जिस भगवान की, वो भगवान की पूर्ण अंतिम स्थिति तक जो कृष्ण सीमा है भगवत्ता की, वो यशोदा मैया उनको क्या करती है, गंदे लड़के झूठ बोलने वाले अलग रहो हटो, तुमको अपना दूध नहीं पिलाऊंगी, अभी तुम्हारा श्रृंगार किया, तुमने इसको मिट्टी में मिल करके मिला करके गंदे बन गए, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, घरों घरों में नहीं गोदी मिली, किसको, पर ब्रह्म को कह रहे हैं। ऐसा कहीं उपनिषदों में कोई प्रमाण नहीं है जिसने कृष्ण को ऐसा कहा। सखा लोग कृष्ण को पराजित करके, और पराजित करके मल्ल युद्ध में पराजित कर देते हैं, और पराजित करके और हंसते हैं, कृष्ण भी बड़े आनंदित होते हैं पराजित होकर के, गोपियों की चरणों में गिरते हैं, अपने मस्तक को और मुरली को नवाते हैं और कहते हैं, न पारे हम निर्वध संजुजाम, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋणी नहीं हो सकता। कौन कह रहा, ये परब्रह्म कह रहा, गोपियों के चरणों में अपने मुकुट और बंसी को दे करके उनके चरणों में कह रहा, क्या कह रहा है, वो परब्रह्म जिसकी ब्रह्मा इत्यादि शंकर ध्यान लगा करके उनके चरणों की आराधना करने पर भी वो चरण कमल उनके हृदय में नहीं आते, और वह परब्रह्म रो रहा है यशोदा मैया की गोदी में जाने के लिए, उनका दूध पीने के लिए ललक रहा। वो परब्रह्म क्या करता है, एक मैया के दूध से संतुष्ट नहीं होकर के करोड़ों करोड़ों गायों का बछड़ा बना, करोड़ करोड़ों गोपियों का एक बरस तक के लिए पुत्र बना। बलदेव जी देख करके आश्चर्यचकित रह गए, ये परब्रह्म करता है, गोपियों के चरणों में ललकता है, कहता है कि मैंने दोष किया, आगे से मैं ऐसा दोष नहीं करूंगा, हमारे ऊपर मैं प्रसन्न हो जाओ। इसलिए कृष्ण की महत्ता है, ऐसा कोई भी नहीं कर, कोई भी रास नहीं रसा सका। या नृसिंह जी या रामचंद्र जी भी रास कर सकते हैं कभी उनके लिए सब, कृष्ण सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, जो कहीं भी पूर्ण नहीं हुई उसको भी। मेरे कहने का तात्पर्य है एक विशेष कारण के लिए भी आए, वो क्या, किस प्रकार से अपने माधुर्य को, अपने सबसे सुंदर रूप को मैं जगत में प्रकाशित करके सब लोगों को आकर्षण करूं, विशेष करके जो लोग गोपियों की सेवा को देख करके, कृष्ण के प्रति कृष्ण की सेवा को देख करके उपनिषद लोग ललच गए, उन्होंने गोपी होकर के भजन उनकी सेवा करने के लिए आराधना की कितना दिन, करोड़ों जन्मों तक। एक उदाहरण देकर के बतला रहा हूं, उपनिषदों में ऐसा आया कि किसी समय में अर्जुन और कृष्ण रथ पर बैठ करके कहीं जा रहे थे, उस समय में कृष्ण ने उनसे कहा जी भैया अर्जुन मुझे प्यास लगी है कहीं से पानी लाओ। तो अर्जुन पानी की खोज करते हुए पक्षियों को उड़ते हुए देखकर, जो इधर से जा रही हैं पक्षी और उधर से आ रहे हैं, समझा जी इधर कहीं पानी है, उस तरफ में पानी के लिए गए। वहां देखा अरे यमुना नदी है पास ही में बह रही है और सभी पक्षी लोग पानी पी करके लौट रहे हैं। आपने किंतु एक बड़ा आश्चर्य देखा, एक दिव्य वृद्धा महिला जिनके सब तरह से अंगों से दिव्य ज्योति निकल रही है और बैठी हुई है, केश उनके पके हुए हैं, आयु कितनी है मैं नहीं कह सकता। और अर्जुन ने उनको देख करके प्रणाम किया, वो समाधि में थी। धीरे धीरे अर्जुन के कुछ खड़खड़ाने से उनकी समाधि टूटी, तो उन्होंने उनकी प्रदक्षिणा की और कहा जी देवी आप कौन है, किस लिए यहाँ पर है, क्या कर रही है। उन्होंने कहा बेटा मैं कृष्ण के लिए आराधना करता कर रही हूँ, करोड़ों करोड़ों जन्मों से यमुना के किनारे, आज तुमको कुछ रूप में दर्शन देना था, ये कृष्ण की इच्छा थी जो मैं आपको बतलाऊं कुछ, इसलिए आपके सामने आपकी दृष्टि में मैं आ गई, नहीं तो मैं अलक्षित रूप में ऐसे ही मैं भजन करती हूँ। किस लिए कर रही, मैं गोपियों के भावों को देखा, यदि कृष्ण किसी के वशीभूत हो सकता है तो गोपियों के प्रेम के द्वारा ही वशीभूत हो सकते हैं, जिन्होंने धर्म की भी जलांजलि देकर के लोक लज्जा सब कुछ को छोड़ करके, वेद धर्म सबको छोड़ करके और कृष्ण की चरण की सेवा के लिए उपस्थित हुई। इसलिए कृष्ण उनका ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सके, इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं गोपी बन करके किसी प्रकार से गोपियों के गर्भ में जन्म होकर के और गोपियों की दासी बन करके राधा कृष्ण जुगल की सेवा करूं, इसलिए मैं करोड़ों जन्मों से यहां पर बैठी हुई आराधना कर रही। सुनकर अर्जुन दंग रह गए और उनके अंदर में वाजे ये करोड़ों जन्म आप हैं कौन, मैं उपनिषद की एक ऋचा हूं। कौन उपनिषद, गोपाल तापन इत्यादि, और मैं इनकी आराधना कर रही हूं। अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ, लौट करके कृष्ण के पास में गए, कृष्ण से कहा जी ऐसी बात हमने देखी कभी सुनी तो नहीं, कहा जी मैं भी चलता हूं तो जरा देखूं तो कौन है। वहां पर गए, कृष्ण को देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई, आज मेरी आराधना पूर्ण हो गई। कृष्ण ने कहा जी एवं मस्तु, तुम गोपी के शरीर में गोपी के घर में जाकर के वृंदावन में ब्रज में प्रकट ब्रज में जहां पर अभी लीला हो रही होगी उसी जगह में किसी गोपी के घर से जन्म ग्रहण करेगी गोपी बालिका के रूप में, और गोपियों के साथ में जो नित्य सिद्धा राधिका इत्यादि हैं उनके संग से तुम सर्वथा सिद्ध होकर के मेरी स्वामिनी युक्त हो। ये बड़ दे करके तो जो लोग विशेष करके जैसे कृष्ण अवतरित होने पर सुदामा विप्र उनके सखा थी, दूसरे दूसरे बहुत से भक्त लोगों की इच्छा को उन्होंने पूर्ण किया, किंतु गोपियों का भाव जैसा ये गीता में नहीं दे सके, अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन और पांचों पांडव भाई और द्रौपदी अभी भी राधा कुंड में आराधना कर रहे हैं वृक्ष बन करके। किस लिए? हम लोग गोपियों की चरण सेवा हम लोग नहीं प्राप्त हो सकते। कभी हम लोग भी गोपियों की जैसी हमारे हृदय में भावना उत्पन्न होकर के लोभ उत्पन्न हो जाए, ऐसे जन के संस्कार हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे संस्कार वाले, उन लोगों को मैं संस्कार में पूरा करके गोपी भाव को देने के लिए जगत में अवतीर्ण होता हूं। यह सबसे बड़ी बात है, इसी के लिए मेरा आना है, और चीज के लिए नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी भी के रूप में कृष्ण आए उस प्रेम को देने के लिए। उन्होंने जंगली हाथियों को, शुकरों को, बाघ भल्लू को हिरणों के साथ में नचा दिया एक साथ में, और सबको पानी लिया और मदमत्त हस्ती के ऊपर में छिड़क दिया, कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण कहते हुए नाचने लगे वो हाथी भी, और की तो बात किया। और चैतन्य महाप्रभु का यथार्थ आने का कारण भी यही है, अनर्पित चरिं चिराग करुणा तृणा बलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलसां स्वभक्ति श्रियं हरिहपूर्व सुंदर द्यूति कदंब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत भी सचिनंदन। कृष्ण राधा भाव से भी भावित होकर उनके भावों को और गौर वर्ण को रंग को लेकर सचिनंदन के रूप में अवतीर्ण हुए। किस लिए? उन्नतोज्ज्वलसां अपने उन्नत उज्जवल पारकीय भाव को देने के लिए। पारकीय भाव क्या है इसकी व्याख्या में बहुत समय देना। सबसे उन्नत गोपियों के भाव को, कृष्ण से कोई भी गोपी विवाहित नहीं थी, उनका विवाह रुक्मिणी सत्यभामा के साथ में द्वारकापुरी में हुई थी, किंतु कोई भी रुक्मिणी कृष्ण नहीं कहता, सत्यभामा कृष्ण नहीं कहता, क्या कहते हैं? गोपीनाथ, गोपीजाना वल्लभ, राधा वल्लभ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तु। क्यों? इन गोपियों में जो प्रेम का जादू भरा है वही कृष्ण को कंट्रोल कर सकता है, दूसरा नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु देने के लिए, दास सख बात्सल्य को देने के लिए नहीं आए, इसके लिए नहीं, किंतु देने के लिए आए। राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक स्त्री के वशीभूत है, किसी भी दूसरी स्त्री को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए दंडकारण्य निवासियों ने उनसे भीख मांगी थी, किंतु उन्होंने कहा जो तुम लोग गोपी होकर के कृष्ण लीला में आओ उस समय हमसे। रामचंद्र जी जितने भी अश्वमेध यज्ञ किए उसमें सीता जी को, सीता जी तो थी नहीं, वशिष्ठ से उन्होंने पूछा, वशिष्ठ गुरु जी मैं सीता के विरह में अत्यंत व्याकुल हूं, मैं चाहता हूं कि अपना मन कैसे भी बहलाऊं, आप मुझे कोई यज्ञ करने दीजिए, यज्ञ की व्यवस्था कर, मैं यज्ञ करूंगा हमारा मन उसमें कुछ बहल जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा तुम यज्ञ नहीं कर सकते हो, यज्ञ करने के योग्य ही नहीं हो, काबिल नहीं हो। क्यों प्रभु? अपनी सीता को तुमने वनवास दे दिया है, अपन उनको बुला लाओ, उनके साथ में बैठ करके यज्ञ करो, बिना साधर्मिणी का यज्ञ नहीं होता। मैंने कहा ये तो असंभव है, ये मैं नहीं ला सकता, तो यज्ञ भी नहीं होगा। नहीं प्रभु, यज्ञ तो हमको किसी न किसी रूप में जरूर करवाइए। तूने ऐसा कहा जैसे दूसरी स्त्री से शादी कर लो, तुमसे शादी करने के लिए हजारों स्त्रियां तैयार होंगी। कहने मैं दूसरी शादी तो कर नहीं सकता सीता के अतिरिक्त, तो फिर यज्ञ कैसे करो? फिर भी कुछ उपाय बतलाए। उन्हें ऐसा करो सीता जी की प्रतिमा बनाकर जब जब यज्ञ करना और उसके साथ में ही बैठ करके यज्ञ करो। तो उन्होंने वो 11,000 वर्ष तक पृथ्वी में थे, तो उनका 21 22 वर्ष की उम्र में वो घर बार माता पिता उनके आदेश से, पिता के आदेश से वो वन में चले गए और फिर 14 वर्ष वन में रहे। तो 14 और 21 कितना हुआ? 35-36 वर्ष के उम्र में लौट करके आ गए। तब से 11,000 वर्ष तक राज्य किया, उसमें कितने यज्ञ किए? 1100 भी यज्ञ हजार किया होगा। तो उतनी सीता बनी। जब उनका प्राण प्रतिष्ठा राम ने किया तो उसमें प्राण भी संचार हो गए। तो वो कहने लगी कि हम भी आपके साथ में रहेंगी। तो उन्होंने कहा जी देखो, इसमें वही सीता ही हमारे साथ में रह सकती हैं, हमारे मन में है, और किसी ये जो सीताएं जो हुई हैं ये सब लोग कृष्ण लीला में जाएं, द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा, और ये सभी लोग सीता के वहां गोपी के रूप में वहां पर आए और उन गोपियों से हमारा उसमें मिलन हो, इनके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। इसलिए कृष्ण स्तु भगवान स्वयं कृष्ण ही स्वयं भगवान, इस चीज को समझिए। ऐसा मत समझिए कि राम कम है और सब कम है, ऐसा नहीं, अलग नहीं है, कृष्ण ही राम है, राधा जी सीता जी हैं, इस रूप में ग्रहण करेंगे। शंकर जी अलग से कुछ नहीं है, वो कृष्ण के ही परिकर हैं। कभी राम की सेवा के लिए हनुमान बनते हैं और कृष्ण की सेवा के लिए कभी गोपीश्वर महादेव बनते हैं, गोपीश्वर बनते हैं गोपी उनकी सेवा के लिए, उनकी सेवा के लिए कभी भीम में प्रवेश करते हैं जो कृष्ण की सेवा कर सके। इसलिए शंकर जी नाना रूप से उनकी सेवा करते हैं। इसलिए बतलाया गया है जयति शंकर जी की स्तुति, बिना वृंदावना वनी पते जय सोम सोम मौले सनक सनंदन सनातन नारदिड्ड गोपीश्वर ब्रज विलास जुगांग्री पद में प्रेम प्रयच्छ निरुपाधि। ये कृष्ण प्रेम को देने वाले महान हैं, राम के प्रेम को देने वाले हैं। इसलिए राम अलग से नहीं है, कृष्ण ही राम है, कृष्ण ही, जितने 10 अवतार हैं वो सब कृष्ण ही हैं। केशव धृत 10 विध रूप। इसलिए ये सनातन धर्म की नीति, एक ही भगवान की हम उपासना करते हैं, एक ही के सभी परिवार हैं, अलग अलग कोई नहीं है, न शंकर अलग है, न राम अलग है, न कल्कि न वामन न कोई भी, हम ही उनसे अलग नहीं, उनके नित्य दास हैं, किंतु भटक रहे हैं इसलिए दुखी हैं। आज यही तब कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं, 8:30 बज गया है, हम लोग तो 7 बजे ही अपनी भाषण को समाप्त करने वाले हैं सब जगह। तो ऐसे ही हम लोग कल, हम समझते हैं कि 7 बजे इनकी आरती आपकी शेष हो जाती है, तो
7 से 7:30 बजे तक
आरती होती है, तो 7:30 तक हम लोग पहुंच जाएं, जो आरती का भी दर्शन हो जाएगा, और आरती के बाद में हम लोग बैठ करके बड़ी सुंदर सुंदर सनातन धर्म की कथाओं को, कृष्ण राम की कथाओं को मैं बतलाऊंगा, जिससे उनके चरणों में भक्ति हो। गौ प्रेमा
हरि
कीर्तन।
Thus ends the class on the 30th of January 2002 PM in New Zealand, Auckland. Hare Krishna.